आज हम पूज्य गुरुदेव श्री राम शर्मा आचार्य द्वारा रचित हमारा युग निर्माण सत्संकल्प के आठवें संकल्प की गहराई में उतर रहे हैं।
हाँ,
ये संकल्प है चारों ओर मधुरता, स्वच्छता, सादगी और सज्जनता का वातावरण उत्पन्न करेंगे। ये चार शब्द सुनने में बहुत सीधे साधे लगते हैं, लेकिन सत्संकल्प में इन्हें एक पूरे जीवन दर्शन की तरह पेश किया गया है।
बिल्कुल।
तो आज हमारी कोशिश रहेगी कि हम इन चारों स्तंभों को खोलकर समझें कि ये आज के दौर में हमारे व्यक्तित्व, परिवार और समाज के लिए कितने जरूरी हैं।
बिल्कुल। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये संकल्प सिर्फ बाहर की दुनिया को बदलने की बात नहीं करता।
अच्छा,
इसका असली मकसद है हमारे अंदर के बदलाव को हमारे व्यवहार के जरिए बाहर लाना। ये कोई मतलब आदर्शवादी बातें नहीं है, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी में उतारने वाले व्यवहारिक सिद्धांत हैं।
हाँ, ये बहुत जरूरी है।
और ये चारों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मधुरता के बिना सज्जनता अधूरी है, स्वच्छता के बिना सादगी मैली लगती है। चलिए एक एक करके इनकी परतों को खोलते हैं।
तो चलिए पहले स्तंभ से ही शुरू करते हैं, मधुरता। सत्संकल्प में एक बहुत पते की बात कही गई है कि किसके भीतर क्या है, इसका परिचय उसके व्यवहार से जाना जा सकता है।
सही बात है।
जैसे लहसुन या शराब की गंध मुंह से छिपाए नहीं छिपती, वैसे ही मन के बुरे भाव, अहंकार और कड़वाहट इंसान के व्यवहार और बोली से बाहर आ ही जाते हैं।
इसी को मर्मभेदी वचन कहा गया है, ऐसे शब्द जो सीधे दिल पर तीर की तरह लगते हैं।
बिल्कुल।
देखिए, शारीरिक घाव तो समय के साथ भर जाता है, लेकिन शब्दों से लगा घाव वो तो सालों तक रिश्ता रहता है।
हाँ, वो याद रह जाता है।
जो व्यक्ति लगातार कड़वा बोलता है, वो अनजाने में अपने चारों ओर दुश्मनों की एक दीवार खड़ी कर लेता है और दोस्तों को दूर कर देता है।
हाँ,
उसे शायद लगता होगा कि दूसरों को दबाकर या नीचा दिखाकर वो ताकतवर दिख रहा है, पर असल में लोग उसे घमंडी, ओछा और एक तरह से असुरक्षित समझते हैं। फिर जब उसे सच में किसी के साथ की जरूरत पड़ती है तो वो खुद को अकेला पाता है।
लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, आज की दुनिया में, खासकर काम की जगह पर, कभी कभी सीधी और कह सकते हैं कड़वी बात कहनी पड़ती है।
हाँ, बिल्कुल।
फीडबैक देना होता है, गलतियां बतानी होती हैं, तो फिर मधुरता और सच्चाई में संतुलन कैसे बनाएं? कहीं मधुरता का मतलब चापलूसी या सच को छिपाना तो नहीं है?
ये बहुत जरूरी सवाल है। देखिए, सत्संकल्प में मधुरता का मतलब झूठी तारीफ या सच पर पर्दा डालना बिल्कुल नहीं है।
अच्छा,
यहाँ मधुरता का संबंध है नियत से, इरादे से। आप सच बोलिए लेकिन सम्मान के साथ, आलोचना कीजिए लेकिन सुधार की भावना से, अपमान करने की भावना से नहीं। यहीं पर चौथा स्तंभ सज्जनता आकर मधुरता से जुड़ जाता है।
हाँ, ये दोनों साथ चलते हैं।
बिल्कुल। मधुरता हमारे शब्दों का बाहरी रूप है, तो सज्जनता उन शब्दों के पीछे की नेक नियत है। एक सज्जन व्यक्ति कड़वा सच भी ऐसे कहेगा कि सामने वाले को अपनी गलती का एहसास हो, बेइज्जती का नहीं।
अच्छा, तो मधुरता सिर्फ मीठा बोलना नहीं, बल्कि सही इरादे से बोलना है, और इसका असर तो सबसे पहले परिवार पे दिखता होगा।
सबसे पहले।
सत्संकल्प में भी कहा गया है, बड़े जो व्यवहार करेंगे, बच्चे वैसा ही अनुकरण सीखेंगे। घर में अगर हर वक्त तनाव, चीख चिल्लाहट और कड़वे बोल होंगे तो बच्चे भी वही सीखेंगे।
निश्चित रूप से। बच्चे तो एक गीली मिट्टी की तरह होते हैं, वे हमारी बातें नहीं, हमारे व्यवहार को कॉपी करते हैं।
सही बात है।
अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे संस्कारी बने, तो हमें अपने गुस्से, अपनी जुबान और अपने व्यवहार पर काबू पाने के लिए लगातार कोशिश करनी होगी,
संघर्ष करना होगा।
हाँ, संघर्ष। इसीलिए तो पूज्य गुरुदेव ने मधुर व्यवहार और सज्जनता को मनुष्यता की पहली परीक्षा कहा है।
पहली परीक्षा।
जी, अगर हम इस पहली परीक्षा में ही फेल हो गए तो फिर नैतिकता, अध्यात्म और समाज सेवा जैसी आगे की बातें वो तो बेमानी हो जाती हैं।
तो व्यवहार की मधुरता और सज्जनता से एक अच्छा सामाजिक माहौल बनता है, और ऐसा ही एक और पहलू है हमारे आसपास का माहौल, जिसकी नींव है स्वच्छता। सत्संकल्प इस पर भी बहुत जोर देता है और कहता है कि स्वच्छता मानव जीवन की सुरुचि का प्रथम गुण है। मतलब अ पर्सन ऑफ गुड टेस्ट इज फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट अ क्लीन पर्सन।
हाँ, और यहाँ स्वच्छता को सिर्फ अच्छा दिखने से नहीं, बल्कि सीधे सीधे स्वास्थ्य और मानसिकता से जुड़ा गया है।
हाँ,
गंदगी को बीमारी का संदेशवाहक कहा गया है।
बीमारी का संदेशवाहक।
जी, एक बहुत खूबसूरत उपमा दी गई है, जैसे तितली हजारों पौधों को छोड़कर सिर्फ फूलों पर ही जाकर बैठती है।
हाँ,
वैसे ही बीमारी दुनिया की हर साफ सुथरी जगह को छोड़कर गंदगी को खोजती हुई पहुंच जाती है।
वाह,
हमारी जो मूल प्रकृति है वो भी गंदगी के खिलाफ है, इसीलिए तो हमें कूड़े के ढेर को देखकर घिन आती है, बदबू से मन खराब होता है। ये एक स्वाभाविक अलार्म है कि यहाँ कुछ गड़बड़ है।
और सत संकल्प में स्वच्छता के बहुत ही व्यावहारिक पहलू बताए गए हैं जो आज भी उतने ही जरूरी हैं, है ना?
बिल्कुल, रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े हुए।
वही, जैसे व्यक्तिगत स्वच्छता में रोज नहाना और खाने के बाद मुंह साफ करना, कपड़ों की स्वच्छता में रोज पहने जाने वाले कपड़े धोना,
और बिस्तर को साफ रखना।
हाँ, और घर की स्वच्छता में सामान को व्यवस्थित रखना। एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि अव्यवस्थित घर में कीमती चीजें भी कूड़े जैसी लगती हैं।
बिल्कुल, और ये सिर्फ घर की चार दीवारी तक सीमित नहीं है, सार्वजनिक स्वच्छता पर भी उतना ही जोर है।
सही।
घर का कूड़ा बाहर गली में फेंक देना या नालियों को गंदा करना, ये सोच की संकीर्णता को दिखाता है।
हाँ, कि बस मेरा घर साफ रहे,
भाई
कि मेरा घर साफ रहे बाहर चाहे जो हो।
सत्संकल्प में इसके लिए बहुत सरल उपाय सुझाए गए हैं जो गांवों के लिए थे, जैसे सोखता गड्ढे बनाना या शौच के लिए खुरपी साथ ले जाना।
ताकि गंदगी को ढक दिया जाए।
हाँ बिल्कुल, आज शहरों में भी ये सिद्धांत लागू होता है। पब्लिक टॉयलेट को साफ रखना, कूड़ेदान का इस्तेमाल करना, थूकना नहीं, ये नागरिक जिम्मेदारी का भाव है।
यहाँ एक बहुत गहरी बात कही गई है, आत्मा की पवित्रता हमें ईश्वर से मिलाने का पथ प्रशस्त करती है। ये कनेक्शन थोड़ा समझने में मुश्किल लगता है, घर की सफाई और ईश्वर से निकटता, इसके पीछे का दर्शन क्या है?
देखिए, हमारा बाहरी वातावरण हमारे मन का आईना होता है और हमारे मन को सीधे तौर पर प्रभावित भी करता है। जब आपका कमरा, आपका घर, आपकी टेबल बिखरी हुई और गंदी होती है तो आपका मन भी अशांत और उलझावा महसूस करता है।
होता है, बिल्कुल होता है।
इसके विपरीत एक साफ सुथरी व्यवस्थित जगह मन में शांति और स्पष्टता लाती है। आध्यात्मिक भाषा में कहें तो स्वच्छता सत्व गुण को बढ़ाती है।
सत्व गुण
जी, और ईश्वर या चेतना का अनुभव करने के लिए मन का शांत और सात्विक होना पहली शर्त है। तो बाहरी सफाई असल में मन की सफाई का पहला कदम है।
अच्छा,
ये हमें उस मानसिक स्थिति में लाने में मदद करती है जहां हम गहरे विषयों पर सोच सकें या ध्यान लगा सकें।
तो मन की शांति के लिए बाहरी स्वच्छता, और शायद इसी शांति को बनाए रखने के लिए अगला कदम है सादगी।
बिल्कुल,
सत्संकल्प कहता है कि बाहरी दिखावे और फैशन पर होने वाले बेमतलब के खर्च को बचाकर उसे अपनी, परिवार की और समाज की असली जरूरतों पर लगाना चाहिए। ये विचार आज के उपभोक्तावादी दौर में तो बहुत क्रांतिकारी लगता है।
क्रांतिकारी है और जरूरी भी। सत्संकल्प में सादगी को सज्जनता का प्रतीक बताया गया है।
प्रतीक?
हाँ, एक सादे साफ सुथरे पहनावे वाला व्यक्ति ज्यादा भरोसेमंद और आत्मविश्वासी लगता है। ये इस बात का ऐलान है कि मुझे बाहरी चीजों से दूसरों को प्रभावित करने की जरूरत नहीं है, मेरा काम और मेरा चरित्र ही मेरी पहचान है। इसके ठीक उल्टा, जो इंसान जरूरत से ज्यादा भड़कीले कपड़े या दिखावा करता है, समझदार लोगों की नज़र में वो अपनी इज्जत कम कर लेता है।
ऐसा क्यों?
ऐसा लगता है कि वो अपने गुणों की कमी को बाहरी चमक दमक से ढकने की कोशिश कर रहा है।
सत्संकल्प में कुछ उदाहरण भी दिए गए हैं, जैसे सादे कपड़े पहनना, बहुत ज्यादा जेवर ना पहनना, और एक बहुत मजबूत बात कही गई है कि इस तरह की फैशन परस्ती पुरुषों और स्त्रियों के बीच मानसिक व्यभिचार को जन्म देती है। ये एक बहुत सख्त शब्द है।
हाँ, शब्द बहुत वजनदार है।
आज के दौर में जहाँ पर्सनल एक्सप्रेशन यानी व्यक्तिगत अभिव्यक्ति को इतनी अहमियत दी जाती है, क्या ये विचार कुछ ज्यादा ही पुराना नहीं लगता?
मैं मानता हूँ कि ये शब्द बहुत वजनदार है और आज के संदर्भ में इसे सावधानी से समझने की जरूरत है। यहाँ पूज्य गुरुदेव का मकसद किसी के पहनावे की आजादी पर रोक लगाना नहीं था, बल्कि उसके पीछे की मानसिकता पर सवाल उठाना था।
अच्छा, मानसिकता पर।
जी, क्या पहनावे का उद्देश्य सुविधा, शालीनता और आत्मसम्मान है, या फिर दूसरों में वासना जगाना और ध्यान आकर्षित करना है? जब पहनावा सिर्फ शरीर को एक वस्तु की तरह पेश करने का जरिया बन जाता है तो वो मन में अस्वस्थ विचार पैदा करता है, देखने वाले के भी और पहनने वाले के भी। इसी को उन्होंने मानसिक व्यभिचार कहा।
तो ये फैशन के खिलाफ नहीं है?
नहीं, ये फैशन के खिलाफ नहीं, बल्कि उसके दुरुपयोग के खिलाफ एक चेतावनी है।
लेकिन आज सोशल मीडिया के जमाने में एक अच्छी आकर्षक इमेज बनाना करियर और सामाजिक जीवन के लिए जरूरी माना जाता है।
सही बात है।
इंस्टाग्राम पर, लिंक्डइन पर आपकी प्रोफाइल देखी जाती है, ऐसे में सादगी को कैसे अपनाएं? कहीं सादगी का मतलब पिछड़ापन तो नहीं समझ लिया जाएगा?
ये आज के समय का सबसे बड़ा द्वंद्व है, लेकिन यहाँ हमें सादगी और गरीबी या लापरवाही के बीच का फर्क समझना होगा।
हाँ, ये जरूरी है।
सादगी का मतलब गंदे या फटे हुए कपड़े पहनना नहीं है। सादगी का मतलब है शालीनता, सफाई और गैर जरूरी भड़काऊपन से बचना। एक सादा लेकिन अच्छी तरह से प्रेस किया हुआ पहनावा एक भड़कीली डिजाइनर ड्रेस से कहीं ज्यादा प्रभावशाली हो सकता है।
बिल्कुल।
सत्संकल्प में ऐसे व्यक्ति को बहादुर कहा गया है जो भेड़ चाल का हिस्सा बनने से इनकार कर देता है और अपने विवेक के रास्ते पर चलता है।
बहादुर
जी, सादगी सिर्फ पैसे नहीं बचाती, ये हमारे चरित्र की मजबूती का भी सबूत है।
सादगी और महानता के इसी कनेक्शन को समझाने के लिए एक बहुत सुंदर प्रसंग है।
हाँ, श्री रामकृष्ण का।
जी, एक बार प्रसिद्ध डॉक्टर महेंद्रनाथ सरकार अपनी कार से कहीं जा रहे थे। रास्ते में उन्हें परमहंस श्री रामकृष्ण का आश्रम दिखा। वो अंदर गए तो देखा कि एक शांत और सरल व्यक्ति बैठे हुए हैं। डॉक्टर साहब ने उन्हें आश्रम का माली समझ लिया और फूल तोड़ने की इजाजत मांगी।
और उस व्यक्ति ने बिना ये बताए कि वो कौन है बड़ी विनम्रता और खुशी से उन्हें फूल तोड़कर दे दिए।
बिल्कुल।
तो डॉक्टर साहब फूल लेकर चले गए। अगले दिन जब वो खास तौर पर परमहंस श्री रामकृष्ण जी से मिलने आश्रम पहुंचे तो ये देखकर दंग रह गए
कि वो तो वहीं थे
कि जिन्हें उन्होंने कल माली समझाता वो तो स्वयं श्री रामकृष्ण परमहंस ही थे।
सोचिए
उस महान संत की सादगी कितनी गहरी होगी कि एक पढ़ा लिखा व्यक्ति भी उन्हें पहचान नहीं पाया। ये कहानी सिर्फ सादगी के बारे में नहीं है।
नहीं,
ये बताती है कि सच्चा बड़प्पन पद या कपड़ों में नहीं बल्कि विनम्रता और सेवा भाव में होता है।
तो आज हमने मधुरता, शुचिता, सादगी और सज्जनता, इन चार स्तंभों को समझने की कोशिश की। ये सिर्फ अलग अलग अच्छी आदतें नहीं हैं,
नहीं,
बल्कि एक दूसरे से जुड़कर एक ऐसे जीवन का नक्शा तैयार करती हैं जहां हमारा बाहरी आचरण हमारे अंदर की शांति, शुद्धि और सरलता को दिखाता है।
बिल्कुल। और अंत में मैं सत्संकल्प की एक बहुत गहरी पंक्ति पर ध्यान दिलाना चाहूंगा।
बताइए।
कलाकारिता स्वच्छता से आरंभ होती है।
कलाकारिता स्वच्छता से आरंभ होती है।
हाँ, इस पर विचार करना चाहिए। अगर हमारा जीवन एक कैनवस है और हमारे काम उस पर लगी कूची के निशान है तो क्या हम उस पर एक सुंदर, साफ और सरल कलाकृति बना रहे हैं? हो सकता है हमें लगे कि दुनिया बदलने के लिए बड़े बड़े काम करने होंगे, लेकिन शायद असली बदलाव आज के दिन में बोले गए एक मीठे बोल से,
अपने आसपास की गई थोड़ी सी सफाई से,
या दिखावे से बचने के एक छोटे से फैसले से ही शुरू होता है। और यही छोटे छोटे चुनाव मिलकर हमारे जीवन की पूरी तस्वीर को कैसे बदल सकते हैं, ये सोचने वाली बात है।